समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
हर मुश्किल के साथ आसानी, हर दुख के बाद खुशी, हर परेशानी के साथ उसका हल, हर आंसू के बाद हंसी, हर रात के बाद दिन, यही कुदरत का उसूल है। फिर हम घबराते क्यों हैं? जैसे आजकल गर्मी ने हम सब के पसीने छुड़ा रखे हैं। याद रखिए, ये गर्मी जिसने त्राही त्राही मचा रखी है, उसे कुदरत ने हमें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे ही फायदे के लिए हर मौसम को बनाया है। अगर गर्मी से परेशान है तो पंखे, कूलर, एसी की ठंडक में बैठिए। प्यास बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। कुदरत के पैदा किए हुए रसीले फलों का सेवन करके खुद को पानी की कमी से भी बचाइए और तंदुरुस्त भी रहिए। चिलचिलाती धूप में बाहर निकलना दुश्वार है तो सर ढककर, आंखों पर चश्मा लगाकर और छाती की छाया में बाहर निकलिए। सब कुछ तो कुदरत ने उपलब्ध करा ही रखा है ना, बस सही वक्त पर सही फैसला लेकर इस गर्मी से भी बचने के उपाय हमें ही करने हैं। यानी ये साबित होता है कि हर रास्ते पर यकीनन एक मुश्किल हमारे इंतजार में रहती है, मगर हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता भी हमारी ही आंखों के सामने होता है। जरूरत है तो सिर्फ उस रास्ते को पहचानने की। फिर चाहे वो गर्मी का सामना करने जैसी मामूली परेशानी हो या फिर जिंदगी के सफर के उतार चढ़ाव, तो अब तो कभी नहीं घबराएंगे ना किसी भी परेशानी से, क्योंकि हर मुश्किल अपने साथ एक आसानी लेकर पैदा होती है। चलिए, इतनी गूढ़ बात को आपसे साझा करने का मुश्किल काम तो हमने आपसे कर लिया, अब आज सवेरे के माध्यम से जिंदगी के और कुछ फलसफे आप तक पहुंचाने के आसान काम की भी शुरुआत कर ही लेते हैं। FM 100.1 MHz आकाशवाणी गोल्ड पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे में आपके साथ मैं हूं नईम अख्तर, और साथ है मेरे शेफाली सिंह। गुड मॉर्निंग शेफाली।
हेलो नईम, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 MHz एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड जैसा कि नईम ने कहा कि हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त भी आता है, आफ्टर ऑल द लोज वी शुड बी हैविंग एन अपबीट एटीट्यूड, एंड टुडे इज थर्सडे विच इज द मिड वीक, सो आई वुड से कि अभी तक अगर आपका हफ्ता अच्छा नहीं गुजरा है सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड, इट्स स्टिल द मिड वीक एंड यू कैन होप फॉर बेटर डेज। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेर इन वी ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज some historical information related to this day, that is 13th of June. So let's begin with the headlines first.
जी, पहले मैं शुरुआत करती हूँ शेफाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज इटली में अपुलिया के लिए रवाना होंगे। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि भारत को शिखर सम्मेलन में संपर्क देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। लगातार तीसरे कार्यकाल में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली विदेश यात्रा होगी। श्री क्वात्रा ने कहा कि ये यात्रा भारत और अल्प विकसित देशों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सम्मेलन में उपस्थित अन्य विश्व नेताओं के साथ विचार विमर्श का महत्वपूर्ण अवसर होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता पेमा खांडू को आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह दिन के 11 बजे ईटानगर के दोरजी खांडू सम्मेलन केंद्र में होगा। श्री पेमा खांडू ने कल शाम राजभवन में उपराज्यपाल केटी पटनायक से भेंट की और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री पटनायक ने उन्हें नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले कल दिन में श्री खांडू को सर्वसम्मति से अरुणाचल प्रदेश भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और तरुण चुघ उपस्थित थे। गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी महासचिव बीएल संतोष आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।
External Affairs Ministry has said that around 40 Indians are understood to have died and over 50 injured in the fire incident in a labor housing facility in Mangaf area of Kuwait. It said the embassy is ascertaining the full details from the concerned Kuwaiti authorities and the company. Ministry said in a statement that those injured are presently admitted in 5 government hospitals and receiving proper medical care and attention. According to hospital authorities, most of the admitted patients are stable. Following the incident, Ambassador of India in Kuwait, Adarsh Swaika, immediately visited the location of the incident and also the hospitals to ascertain the welfare of the Indian nationals. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi chaired a review meeting on the fire tragedy in Kuwait at his residence in New Delhi. Prime Minister expressed his sorrow at the incident and extended condolences to the families of the deceased. He wished speedy recovery of those injured. Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh rushed to Kuwait to oversee the relief measures and facilitate expeditious repatriation of the mortal remains. Prime Minister announced ex gratia relief of 2 lakh rupees to the families of the deceased Indian nationals from Prime Minister Relief Fund. Earlier External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar also spoke to his Kuwaiti counterpart Abdullah Ali Al-Yaya on the fire tragedy in Kuwait yesterday evening. In a social media post, Dr. Jaishankar said he was apprised of the efforts made by Kuwaiti authorities in that regard. He said he was assured that the incident would be fully investigated and that responsibility will be fixed. India's headline retail inflation eased to the lowest in a year at 4.75% in May 2024, according to the data released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation. In the previous month of April 2024, the Consumer Price Index CPI inflation was at 4.83%. The headline rate for last month is the lowest after May 2023 and has now been under the 5% mark for 3 consecutive months, starting March 2024. The downward trajectory for the headline inflation rate is because of the major subgroups either witnessed a softening or remained unchanged as compared to the previous month. The US Federal Reserve kept the interest rate unchanged but hinted that there could be one cut between now and the end of the year as they continue the fight against inflation. The Fed announcement came last night after a 2-day meeting of its top officials. The benchmark interest rates remain unchanged between 5.25% and 5.50% for the 7th straight meeting. Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav will launch the PM Shri Tourism Air Service today to enhance connectivity for tourist destinations. The Chief Minister will inaugurate the first flight from Bhopal to Jabalpur at Raja Bhoj International Airport at 9 a.m. This flight will go from Bhopal to Jabalpur via Rewa and from there it will land in Singrauli. Dr. Yadav will also inaugurate the ticket booking counter at Bhopal Airport and provide boarding passes to the passengers. 8 cities of the state, including Bhopal, Indore, Jabalpur, Rewa, Ujjain, Gwalior, Singrauli and Khajuraho, will be connected through air service. The PM Shri Tourism Air Service is being operated by the Madhya Pradesh Tourism Board on a public-private partnership basis through JetSurf Aviation Private Limited.
ICC T20 Cricket Vishv Cup में भारत ने अमेरिका को 7 विकेट से हराकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए अमेरिका ने 110 रन बनाए। अमेरिका के लिए नीतीश कुमार ने 23 गेंदों पर सबसे अधिक 27 रन की पारी खेली। वहीं भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट लिए। 111 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत खराब रही। अमेरिका के तेज गेंदबाज सौरभ नेत्रावलकर ने अपने शुरुआती ओवरों में ही विराट कोहली को शून्य पर और रोहित शर्मा को 3 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव के शानदार अर्धशतक और शिवम दुबे के साथ उनकी साझेदारी के बल पर भारत ने यह मैच जीत लिया। आज विश्व कप में 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में आज सुबह मेजबान वेस्टइंडीज त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में न्यूजीलैंड से खेलेगा, के दूसरे मुकाबले में आज शाम वेस्टइंडीज के किंग्सटाउन में बांग्लादेश का सामना नेदरलैंड से होगा।
हरियाणा हेल्थ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एंड आयुष मिनिस्टर डॉ कमल गुप्ता यस्टरडे हेल्ड अ रिव्यू मीटिंग विद द ऑफिशियल्स ऑफ द आयुष डिपार्टमेंट एंड हरियाणा योगा कमीशन रिगार्डिंग द प्रिपरेशंस फॉर द 10th इंटरनेशनल योगा डे। डॉ गुप्ता इन्फॉर्म दैट द हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज योगा प्रोग्राम्स फ्रॉम 7 टू 8 एएम एट द डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे ऑन जून 21। योगा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर ऑल्सो बींग ऑर्गेनाइज फ्रॉम May 29 to provide yoga training to the participants of the International Yoga Day program, which will continue till June 15.
Surya tujhe namaste dharti tujhe naman shukriya vayu tera dhanyavad gagan कोश कोश का अभिनंदन श्वास श्वास में हो चंदन। विश्व एक परिवार
और आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें, जिनमें पहले शेफाली के पास हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से कुछ खबरें।
जी, लेट्स स्टार्ट विद चेन्नई। आईआईटी मद्रास विल इंट्रोड्यूस लोअर क्रेडिट टारगेट्स, एक्स्ट्रा वेकेशन एंड अर्ली एग्जिट ऑप्शंस टू ईज एकेडमिक प्रेशर ऑन बीटेक स्टूडेंट्स। द नंबर ऑफ क्रेडिट्स फॉर द डिग्री प्रोग्राम हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 434 टू 400। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स विल बी गिवन 4 एक्स्ट्रा वीक्स ऑफ वेकेशन। Everyone will have to do a recreation course. A mental health survey found that 2% of its 12,000 students have stress-related issues. The new measures are based on recommendations by an institute curriculum task force. First years can have winter vacation for 1.5 months and summer vacation for 2.5 months. It will also allow students to select 40% of total credits as elective courses. And Naeem, I would say that it's a very good measure because studies are never meant to be stressful.
Yeah.
So it's very good, I would say.
Mm.
Another news from Chennai. The Tamil Nadu government has set up a helpline to assist the Indians who need help in Kuwait. Chief Minister M.K. Stalin has asked the State Overseas Welfare Ministry to do the needful to help those who were affected in the fire accident. The department has sought the help of the Indian Embassy in Kuwait with details regarding the affected families. The phone numbers are 91800309-3793 and 91806900990. Last news from Chennai. India's digital transformation, rapid growth of digital infrastructure and services under the Digital India Initiative were all discussed at a special lecture, Exploring Digital India, a Legal Perspective, hosted by Savita School of Law. Understanding cyber laws, data breaches, online fraud and privacy violations, legal frameworks in information technology and recent amendments aimed at enhancing cyber security were topics covered during the event. Sessions included an interactive segment where the speakers explored the practical implications of cyber law through real-life examples. This interactive approach provided students with a deeper understanding of the complexities involved in digital law and its real-world applications. Now, news from Bengaluru. Karnataka Medical Education Minister Dr. Sharan Prakash Patil has informed that measures are taken to spread awareness about quacks and imposters practicing as doctors. He was speaking at World Homeopathy Day and seminar in Bengaluru yesterday. Admitting that the menace of fake doctors has increased in the recent days, the minister said that several complaints are received by his department about clinics opened by such quacks. Such doctors are successful in fooling the villagers and there is an urgent need to end such illegal clinics. He sought the assistance of Homeopathy Federation to help the government in ending this problem, as wrong treatment by fake doctors can also cause death of patients. He, however, added that the central government and National Medical Council hold the onus of ending the menace of quacks and bogus healers through policy initiatives. And I would urge all our listeners to also be careful and always go to the proper medical practitioners for their health-related issues. Lastly, news from Telangana. The Eastern Naval Command with Gandhi Institute of Technology and Management, GITAM, deemed to be a university at Visakhapatnam, organized a capsule course on artificial intelligence applications on 10 and 11th of this month. The course, coordinated by INS Kalinga, featured interactive sessions covering basic concepts of AI and machine learning along with hands-on experience in various AI applications. Professors from GITAM led these sessions, providing valuable knowledge and practical skills to the participants. In another news, in Telangana, need for expediting the road connectivity in left-wing extremism areas has been emphasized. Concerted efforts among various departments to take forward the road projects in these areas has been discussed in Hyderabad yesterday. Department of Environment, Forest Science and Technology Principal Secretary A. Vani Prasad held the key meeting and discussed the road connectivity program for left-wing extremist areas, and all key stakeholders from various governmental departments attended. The meeting discussed, among others, over 50 road proposals under the Prime Minister Gram Sarak Yojana, PMGSY, and over 60 road proposals earmarked under three phases of the road connectivity project for LWE affected areas. An official release stated that several key matters were deliberated upon, including the pending submission of compliance reports, the deposition of compensatory levies, the approval of eco bridges and the mutation of non-forest lands. Vani Prasad asked the Roads and Buildings Department and the Panchayat Raj Engineering Department to expedite the resolution of pending matters with utmost priority. And now for news from Delhi, Mumbai and Kolkata, let's move over to you, Naeem.
जी, मैं पहले दिल्ली से शुरुआत करती हूँ. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राजधानी में बढ़ते जल संकट पर चिंता जताते हुए कहा कि जनता से जुड़े मुद्दे पर चुनी हुई सरकारों को राजनीति करने के बजाय उनकी समस्याओं का निपटारा करना चाहिए. उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में दिल्ली की जनता पानी की कमी से जूझ रही है. श्री देवेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र और दिल्ली की सरकार को जल संकट को दूर करने के लिए प्राथमिकता के साथ काम करना चाहिए. हरियाणा के सिंचाई राज्य मंत्री अभय सिंह यादव ने कहा कि हरियाणा दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में और अपने हिस्से से भी ज्यादा पानी दे रहा है. सरकार ने पहले भी पानी देने में कभी लापरवाही नहीं बरती है और आगे भी ऐसा नहीं करेगी. पानी का प्रबंधन और उपयोग दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है.
हमारा कंसिस्टेंटली स्टैंड यही रहा है और हम हमेशा यही बात कहते रहे हैं कि हम पूरा पानी दिल्ली को दे रहे हैं, बल्कि जितना उनका हक है उससे ज्यादा पानी हम दे रहे हैं. हम शुरू से इस बात के प्रति जागरूक हैं कि नेशनल कैपिटल में किसी तरह की पानी की ड्रिंकिंग वाटर की अव्यवस्था ना फैले. हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि पानी उनको पूरा दिया जाए और वो उस पानी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो उनकी जिम्मेवारी है. अगर हमारा पूरा पानी देने के बाद भी उनको पानी की कमी महसूस होती है तो मैं शुरू से ही कहता रहा हूं, हमारा स्टैंड यही रहेगा कि वो अपने अंदर के मैनेजमेंट को देखें कि कहां कमी है, पानी की कमी नहीं है.
गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना इलाके के एक गांव में तीन मंजिला मकान में भीषण आग लगने से दो बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि इस मकान में फोम बनाने का काम होता था. दमकल विभाग के मुताबिक घटना बुधवार 8 बजे रात के बाद की है. मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही सभी बुरी तरीके से आग में झुलस चुके थे. जानकारी मिली है कि इस आग में दो बच्चे, दो महिलाएं और एक युवती फंस गए थे. शॉर्ट सर्किट होने की वजह से घर में भीषण आग लग गई. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने आग को बुझाने का प्रयास किया. आग ने तीनों मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया था. दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने ईद उल अजहा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के साथ बैठक की और राजधानी की शाही ईदगाह का दौरा किया. बैठक में मंत्री हुसैन ने अधिकारियों को ईदगाह के आसपास की सड़कों और गलियों में पर्याप्त साफ सफाई सुनिश्चित करने, सड़कों और फुटपाथ की तत्काल मरम्मत और उचित जल निकासी के निर्देश दिए हैं. बैठक में मंत्री इमरान हुसैन ने मेडिकल टीम, मोबाइल एम्बुलेंस, सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस टीम की तैनाती जैसी आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों की भी समीक्षा की. ईद के दौरान सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस को भी योजना तैयार करने के लिए कहा गया है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों में एक साल में दो बार प्रवेश देने के निर्णय पर जामिया मिलिया इस्लामिया ने कहा है कि विश्वविद्यालय की आगामी कार्यकारी परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की जाएगी. जामिया के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद शकील ने एक वक्तव्य में कहा है कि कार्यकारी परिषद के सदस्य निर्णय लेंगे कि द्विवार्षिक प्रवेश के प्रावधान को विश्वविद्यालय में किस प्रकार लागू किया जाए. उन्होंने कहा कि यूजीसी के इस निर्णय को पीएचडी पाठ्यक्रमों में भी अकादमिक और कार्यकारी परिषद के अनुमोदन के बाद लागू किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि यूजीसी के निर्णयों को लागू करने से पहले विश्वविद्यालय के वैधानिक निकायों से अनुमोदन लेना अनिवार्य होता है. और कुछ खबरें मुंबई से. मुंबई उपनगर के जिला कलेक्टर और सहायक चुनाव अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर ने मुंबई शिक्षक और स्नातक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र के चुनावों के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने के निर्देश दिए. श्री क्षीरसागर ने इस चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं. 2024 के मुंबई शिक्षक और मुंबई स्नातक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र के चुनावों की तैयारी के लिए मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर कार्यालय में नामित अधिकारियों और समन्वय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी. जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी नामित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदान केंद्र अच्छी स्थिति में हो, खासकर मॉनसून के मौसम को देखते हुए। उन्होंने दिव्यांग मतदाताओं के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इस चुनाव में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 14 जून को विले पार्ले के मास्टर दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण होगा। इस प्रशिक्षण में सभी संबंधितों के लिए उपस्थिति अनिवार्य है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में एमआईडीसी इलाके में एक केमिकल कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भीषण आग लग गई। अधिकारियों के मुताबिक कल सुबह करीब 10:15 पर इंडो अमाइन नामक कंपनी में आग लगने के बाद 4 से 5 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने मुंबई के वर्ली स्थित नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया के मुख्यालय में आधुनिक ब्रेल प्रिंटिंग मशीन ब्रेलो 300 का उद्घाटन किया। राज्यपाल द्वारा उपलब्ध कराए गए विवेकाधीन कोष से एनएबी इंडिया द्वारा खरीदी गई इस मशीन का उपयोग पाठ्य पुस्तकों, उपन्यासों, धार्मिक पुस्तकों, कार्ड और अन्य पठन सामग्री की छपाई के लिए किया जाएगा। राज्यपाल ने एसएससी बोर्ड परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक लाने वाले दृष्टिबाधित छात्रों को सम्मानित किया। इस अवसर पर शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। और एक खबर अब कोलकाता से। मुरारी लाल लोहिया कोलकाता स्थित ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के नए अध्यक्ष बने हैं। क्लब के पूर्व अध्यक्ष डॉ प्रणब दासगुप्ता को कल्याण मजूमदार की जगह सलाहकार बनाया गया है। बुधवार को कोलकाता के एक 5 सितारा होटल में हुई बैठक में एक नई समिति का गठन भी किया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान झूलन गोस्वामी को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। और महानगरों की खबरों के बाद शेफाली, क्यों ना हम महानगरों के मौसम का भी हाल अपने सभी श्रोताओं को दे दें। उनमें से सबसे पहले हम दिल्ली के बारे में बात करते हैं और दिल्ली के मौसम के बारे में सिर्फ हम ही बात नहीं करेंगे, हमारे साथ एक विशेषज्ञ भी हैं। पहले हम बता दें कि दिल्ली में आज गर्म हवाएं चलेंगी, अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। और मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जैनमणि ने भी हमें ये खबर दी है। इसके अलावा मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोलकाता में भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का मौसम शेफाली बताएंगी।
बिल्कुल, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 27 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 37 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद अ फ्यू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 21 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 29 डिग्रीज। Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius.
Temperature तो बहुत ज्यादा हो गया है हर जगह कहीं, और इसी से हमने आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी की थी।
बिल्कुल,
लेकिन ये टेम्परेचर सिर्फ आज के ही साल नहीं हुआ है, मतलब 2024 में नहीं हुआ, हमेशा से ही जून में इतना टेम्परेचर रहता है। और अगर बात करें हम 13 जून की, तो 13 जून में इतिहास में न जाने क्या क्या खास घटनाएं घटेंगे, जिनमें से कुछ घटनाओं को, कुछ खास चीजों को हम अपने श्रोताओं से शेयर करना चाहेंगे। आज ही के दिन यानी 13 जून 1420 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। सन 1940 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर की हत्या कर उस हत्याकांड का बदला लेने वाले भारतीय उधम सिंह को लंदन में फांसी दे दी गई थी।
On 13 June 1731, Swedish East India Company was formed. For 15 years, King Frederick of Sweden gave the company a charter. In 1757, on this day, Clive marched to Murshidabad against Nawab Sirajuddaulah, along with the force comprising of 1,800 British and 2,000 Indian soldiers with 8 cannons. In 1918, the foundation stone of Sir Kavasti Jahangir Public Hall was laid in Mumbai. And in 1931, Gandhi started to live in a garret amongst the poor in London. And in 1943, Netaji Subhash Chandra Bose started his journey from Germany to Tokyo by a submarine. And in 1966, 60 people were killed in a collision between two suburban trains off Bombay.
इस बीच 1993 में 13 जून को किम कैम्बेल कनाडा की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। सन 2002 में 1972 के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल समझौते की समय सीमा समाप्त हुई थी।
In 1995, India and France signed bilateral investment protection pact. In 1999, the Indian Army secured the strategic Tololing Peak in the Dras sector. And in 2000, Major General Manuel Saavedra of Uruguay appointed Chief Military Observer of the UN mission monitoring the LOC in Kashmir.
2003 में डेनियल अखमतोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। 2005 में ईरान 2009 के अंत से 25 वर्ष के लिए भारत को तरल प्राकृतिक गैस का निर्यात करने पर सहमत हुआ था। और अब बात उन महान शख्सियतों की जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है। पहले बात करते हैं पुण्यतिथि की। आज मुद्रा राक्षस की पुण्यतिथि है। भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक और व्यंग्यकार थे मुद्रा राक्षस। उनके साहित्य का अंग्रेजी सहित दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। उनका जन्म 21 जून 1933 को लखनऊ के पास बेहटा नाम के गांव में हुआ था और उनका मूल नाम मुद्रा राक्षस नहीं बल्कि सुहास वर्मा था। उन्होंने 1950 के आसपास से लिखना शुरू किया था। कहानी, उपन्यास, कविता, आलोचना, पत्रकारिता, संपादन, नाट्य लेखन, मंचन, निर्देशन जैसी विधाओं में उन्होंने सृजन कार्य किया। मुद्रा राक्षस ने 10 से भी ज्यादा नाटक, 12 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 व्यंग्य संग्रह, 3 इतिहास किताबें और 5 आलोचना संबंधी किताबें लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने 20 से भी ज्यादा नाटकों का निर्देशन किया।
Today is the death anniversary of Pandit Prannath, an Indian classical singer and master of the Kirana Gharana singing style. He established the Kirana Center for Indian Classical Music in 1972. He also attracted a strong following among the American minimalist composers. Now, interestingly, when he was 13 years old, Prannath took up residence with the reclusive singer Abdul Wahid Khan of the Kirana Gharana. Both guru and disciple were much attracted to mysticism. Like his teacher, Prannath's singing emphasized precise intonation and the gradual note-by-note exposition of tone and mood in the alap section of the music.
आज ही पुण्यतिथि है मेहदी हसन की, प्रसिद्ध गजल गायक। उन्हें गजल का सरताज भी माना जाता है। खान साहब के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। मूलतः राजस्थान के थे मेहदी हसन और इन्हें गजल सम्राट भी कहा जाता है। इनका जन्म राजस्थान के झुंझुनू के लूणा गांव में हुआ था। मेहदी हसन को संगीत विरासत में मिला था। मशहूर कलावंत संगीत घराने से थे वो। उन्हें संगीत की तालीम अपने वालिद उस्ताद अजीम खां और चाचा उस्ताद इस्माइल खां से मिली। इन दोनों की छत्रछाया में हसन ने संगीत की शिक्षा दीक्षा ली और बहुत ही छोटी उम्र में ध्रुपद गाना शुरू कर दिया था।
Known for his haunting baritone voice, Hasan is credited with bringing ghazal singing to a worldwide audience. He's unique for his melodic patterns and maintaining integrity of the ragas in an innovative way. In 1964, his ghazal for a film Firangi, Gulo Mein Rang Bhare, Baade Naubahar Chale, written by renowned poet Faiz Ahmed Faiz, made him extremely popular.
और इनके बारे में एक खास बात यह है कि 1935 में जब उनकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी, तो फजिलगा के एक समारोह में पहली बार इन्हें गाने का मौका मिला था और इस समारोह में उन्होंने ध्रुपद और खयाल की गायकी की थी और इसी वजह से इनके संगीत के लिए बल्कि गजल की दुनिया में योगदान के लिए उन्हें शहंशाह गजल के उपाधि से नवाजा गया था। अनगिनत गजलें उनकी आवाज में ऐसी हैं जो दुनिया भर के गजल के चाहने वाले पसंद करते हैं, लेकिन आपकी नजर हम उनकी आवाज में ये गजल कर रहे हैं।
मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है मेरे प्यार को।
जी बिल्कुल, मेहदी हसन के लिए जो प्यार उनके चाहने वालों के दिलों में वो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। और ऐसी ही एक और हस्ती का जिक्र हम कर रहे हैं जिनकी आज जयंती है, प्रेम धवन। हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार। उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए बहुत से मशहूर गीत लिखे और सबसे खास बात उनकी यह है कि गीतकार ही नहीं बल्कि कुछ फिल्मों में उन्होंने संगीत भी दिया, यानी संगीतकार भी थे, नृत्य निर्देशन भी किया और यहां तक कि अभिनय भी किया। और 1970 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
पैरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन
छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।
और वक्त हो चुका है अपने श्रोताओं से हम विदा ले लें, तो अनुमति दीजिए नईम अख्तर और शेफाली को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं खत्म करने की। आकाशवाणी गोल्ड एफ एम 100.1 मेगाहर्ट्ज को आप सुनते रहिए। नमस्कार।
अपने सरों की चढ़ा।